ओम शांति। तो इस भट्टी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक सभी ने पढ़ा, भावना की क्या उड़ान में क्या हो रहा है पुरुषार्थ का। दम तोड़ता पुरुषार्थ, क्या अर्थ है इसका? भावना की उड़ान में पुरुषार्थ की मृत्यु हो रही है। चर्चा की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। भारत में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था वाचस्पति मिश्रा। वेदांत पर कई सारी किताबें और टीका टिप्पणियां उन्होंने लिखी है। वो जब युवा थे तो उनके मन में बहुत वैराग था संसार के प्रति, संसार की सभी बातों के प्रति। फिर भी उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारी शादी करनी है। वो इतने वैराग अवस्था में थे और अपने अध्ययन में इतना लीन थे कि बाहर क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं था। पिता ने कहा, उन्होंने हां कर दिया और उनकी शादी हो गई। परंतु वो अपनी अवस्था में मगन थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी की ये बातें हैं। पत्नी घर में आ गई, उन्हें पता ही नहीं। वो फिर से अपनी साधना में लीन हो गए। दिन रात जो किताब तो वो किताब में इतने वो खोए हुए थे कि पत्नी घर में आ गई, उन्हें पता ही नहीं। और उस पत्नी ने भी कभी उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो भी घर में है। उनके लिए खाना पकाती, सब कुछ करती, परंतु स्वयं को बहुत बड़ा घर में छुपा के रखती। ऐसा 12 साल तक चला और उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि घर में कोई स्त्री भी है। उसका ये लक्ष्य था कि इनकी साधना भंग ना हो, ये जो भी साधना कर रहे हैं करते रहे, अच्छे से करते रहे। और वाचस्पति जो थे उनका एक संकल्प था, जैसे ही 12 साल पूरे हो जाएंगे मैं इस संसार से संन्यास ले लूंगा, इस संसार का त्याग कर दूंगा। 12 साल हो चुके थे, उन्हें पता ही नहीं कि वहां कोई स्त्री भी रह रही थी। 12 साल अंतिम रात्रि, सुबह वो भोर होते ही निकल जाने वाले थे कि दिया बुझ गया। तो किसी ने दिया लगाया, पहली बार उन्होंने देखा किसी का हाथ जिसमें चूड़िया है। तो उन्होंने कहा, आप कौन हो हे देवी? उस स्त्री ने कहा, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, 12 साल पहले आप ही मुझसे विवाह करके मुझे यहां लाए थे। वो कहता है, क्या? उसका कुछ भी नहीं, उसमें तो वेदांत की आत्मा ब्रह्म परमात्मा उसकी चर्चा है, परंतु उसका त्याग है, उसकी सहनशीलता है, उसका एक तटस्थ भाव है। यदि वो भावुक हो जाती तो शायद ये ना कर पाती। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, भावना की उड़ान, भावनाएं जो है कई बार वश में नहीं है, अति संवेदनशील स्वभाव, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन। तो आज की सारी चर्चा हम HSP पर करेंगे, हाईली सेंसिटिव पर्सन, अति संवेदनशील व्यक्तित्व एक ब्रह्मा कुमारी जीवन में। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्या इस मार्ग पर चल पाएगा? उसकी परिभाषा क्या है HSP की? हाईली सेंसिटिव पर्सन अर्थात बात बात पर नाराज। एक दूसरा, किसी ने कुछ कर दिया, कह दिया, उदास। किसी ने कुछ बोल दिया, रूठना और रूठना। हमेशा ये सोचना कि दूसरे मेरे बारे में कुछ करने वाले हैं। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, मन में एक अनुमान है, शायद मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। किसी ने कुछ गलत व्यवहार कर दिया तो तीर अंदर जुब जाता है, खून बहने लगता है, अप्रगट। मीरा रोए चुपके चुपके, मेरो दर्द ना जाने कोई। किसी ने कुछ बोल दिया, अति दुखी, 2 दिन तक उदास, 2 दिन तक किसी से बात नहीं, सिर दर्द, जो किसी भी गोली से ठीक नहीं होता है। हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी, ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं उनमें कुछ खूबियां भी होती है। वो दूसरों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, फील ज्यादा कर सकते हैं दूसरों के दर्द को, दूसरों के स्वभाव को, दूसरों के भाव को, परंतु खुद भी फील बहुत ज्यादा करते हैं, हर चीज को फील करते हैं। कोई भी शिक्षा अगर उन्हें दी जाए, उसे वो शिक्षा के रूप में नहीं स्वीकार करते, सोचते हैं जानबूझकर मुझे ये कहा गया है। कोई भी करेक्शन यदि उन्हें दिया जाए तो ये सोचते हैं कि जरूर मुझे गिराने के लिए ये कहा जा रहा है। तो इसे कहा जाता है हाईली सेंसिटिव पर्सन, अति संवेदनशील होना, बात बात में भावनाएं प्रकट होती है। अति संवेदनशील अर्थात रोना, कभी आंसू अंदर से तो कभी बाहर से, बार बार आंसू, चुप चुप के रोना। हमारे पास एक बहन आए थे, हमने पूछा क्या तकलीफ है, तो उन्होंने कहा था रोना आता है। हमने पूछा कितनी बार, तो कहा 20 बार दिन में। अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिव नेचर, ओवर सेंसिटिव नेचर। संसार इसे बहुत अच्छा मानता है, एक रीति से अच्छा भी है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं बहुत उनके अंदर भावुक होते हैं, भावनाएं बहुत होती है, सिंपति होती है, एम्पति होती है, सहानुभूति और समानुभूति अंग्रेजी में एक दूसरा शब्द है एम्पति, एक है सिंपति सहानुभूति, किसी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना, उसके भी ऊंचा एक शब्द है एम्पति। एम्पति अर्थात जैसे वो महसूस कर रहा है वैसे ही महसूस करना और उसके लिए कुछ करना। जैसे रास्ते पर कोई गरीब है भिखारी है, एक है उसके ऊपर दया आना, उसके भी ऊपर सहानुभूति कंपैशन मर्सी, और फिर सिंपति, सिंपति के भी ऊपर है एम्पति समानुभूति। जैसा वो है वैसा ही स्वयं को महसूस करना, वही फीलिंग को लाना, यदि मैं ऐसा होता तो क्या। तो ये है तो पॉजिटिव साइंस, जो अति संवेदनशील व्यक्तित्व होते हैं उनमें ये सारी चीजें होती है। दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं, दूसरे की तकलीफ को समझ सकते हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं, किसी दूसरी बहन की तकलीफ को बहुत अच्छा है अच्छे से और गहराई से समझ सकते हैं। ये सभी किसके लक्षण है? संवेदनशील व्यक्ति के। परंतु यही भावनाएं, यही सेंसिटिव नेचर, जो कि संसार में तो अच्छा माना जाता है, परंतु इस ब्राह्मण जीवन में, इस ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी जीवन में कभी कभी बहुत बहुत नुकसानकारक सिद्ध होता है, क्योंकि ये मार्ग कांटों का मार्ग है। सुबह से लेकर रात तक कितने कांटे चुभेंगे? मिनिमम कितने कांटे हैं कांटों के जंगल में? कोई ना कोई कुछ तो करेगा, या तो बोलेगा या तो गलत व्यवहार या कुछ तो करेगा। यदि हर बार हम उसको फील करें, समाले, अंदर बिठा दे, उसके ऊपर चिंतन करे, उसके ऊपर मनन करे, उसका फिर वर्णन करे, आंसू बहाए, रोए, दुखी हो जाए, उदास हो जाए, तो क्या ये बुद्धिमानी है? क्या कहेंगे आप? सभी से सबसे पहले तो प्रश्न है, क्या अति संवेदनशीलता अच्छा गुण है या अवगुण है? क्या है? अवगुण। क्या कहेंगे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैलेंस, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। ये मार्ग धधकती हुई अग्नि पर चलने का मार्ग है, कांटों वाला मार्ग है। सुबह से लेकर रात तक सहन करना है, सबको सहन करना है, ऊपर साथी, नीचे सामने वाले, बाहर वाले, सबको। यदि कोई इसमें नाजुक हो जाए, छुई मुई, फीलिंग देवी शब्द पता है ना सबको, फीलिंग देवी, छोटी छोटी बात में संकल्प चलते हैं, भावनाएं उमड़ आती है। कभी बाबा ने कहा है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स आना अर्थात आधी मृत्यु। इस मार्ग में तो बहुत सहन करना है, सहना है। सभी को, ज्ञानियों को, अज्ञानियों को, अज्ञानियों को कम, ज्ञानियों को ज्यादा। जो अज्ञानी है उनको तो सहन करना बहुत आसान है, बेचारे अज्ञानी, पता ही नहीं। परंतु यदि दुख उनसे आए जो संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं, तो फिर क्या, तो दर्द और चोट ज्यादा लगती है। तो फीलिंग देवी कहो, HSP कहो, या संवेदनशील व्यक्ति कहो, या भावनाओं की यह उड़ान कहो, है तो ऊपर से बहुत अच्छी बातें, परंतु अंदर सहन दुख समा जाता है। स्थित प्रज्ञ योगी की यह परिभाषा नहीं है। स्थित प्रज्ञ योगी अर्थात निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ सब में समान, और यहां एक संवेदनशील व्यक्ति बात बात में उदास, बात बात में नाराज, बात बात में दुखी, बात बात में आंसू, एक अव्यक्त मुरली है, सभी ने सुनी होगी। बहुत सुंदर महावाक्य है बाबा के सभी बहनों के लिए। आंसुओं की टंकी को क्या कर दो, याद है किसी को ये महावाक्य? आंसुओं की टंकी को योग की धूप से सुखा दो। हमारे उधर एक बहन है, वो कहती थी हमारी आंसुओं की टंकी इतनी पावरफुल है कि योग की धूप भी उसे सुखा नहीं सकती, इतनी पावरफुल है। तो एक तो यह व्यक्ति हो गया जो अति संवेदनशील है, बात बात में उदास, बात बात में नाराज, बात बात में दुखी, बात बात में दूसरों से बात करना बंद, बात बात में दूसरों के प्रति मन में कुछ समा के रखता है, सूक्ष्म घृणा का भाव, जिसने हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया या हमसे अपशब्द बोले, उस व्यक्ति के प्रति अंदर ही अंदर कुछ न कुछ समा के रखता है। ये वो हो गया एक व्यक्ति। अब दूसरे जो उसके साथ रहते हैं उनकी स्थिति क्या है? एक तो हो गया संवेदनशील व्यक्ति, HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन। दूसरे जो उसके साथ रहते हैं और जो इतने संवेदनशील नहीं है उसकी तरह, उनकी क्या गति है? सबसे पहले तो एक बहुत सेंसिटिव व्यक्ति के साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है। कब वो नाराज हो जाए पता नहीं, हमेशा एक डर रहता है कि इसको कुछ बोलने जाओ, कोई भी शिक्षा देने जाओ और वो नाराज हो गया तो उसको करेक्शन करना मुश्किल है, उसको कोई शिक्षा देना मुश्किल है, उसे कुछ कहो तो मिस इंटरप्रिटेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हमने जिस भाव से कहा वो किसी और ही भाव से लेता है। एक संवेदनशील व्यक्ति जो है, हाईली सेंसिटिव जिसका नेचर है, बात बात में जो उदास और नाराज और रूसना और रूठना जिसके स्वभाव में है, जो संस्कार बन गया है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्तियों को भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि उसको कुछ कह ही नहीं सकते, पता नहीं क्या कर दे, घर छोड़कर ही चला जाए तो। कुछ भी कर सकते हैं। जहां सेंसिटिव नेचर होता है वो जैसे स्पंज की तरह सब कुछ खींच लेता है, दुर्भाव, दुर्वाक्य, कटु वचन अपने अंदर समा लेता है। और एक स्वभाव होता है सेंसिटिव व्यक्ति का कि जो भी गलत बातें उसके साथ हुई है वो भूलता नहीं है, कभी भी समा के रखता है। दुख जो प्राप्त हुआ है उसको बहुत अच्छे से संभालता है। ये स्वभाव है सेंसिटिव नेचर के व्यक्ति का। तो एक तो देखा वो कैसा है, दूसरा देखा उसके आसपास के लोग। अभी और एक प्रश्न है अति सेंसिटिव होने का इस ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार जीवन में फायदे है या नुकसान है, क्या कहेंगे? अगर नुकसान है तो कौन से, और यदि है तो मैं क्या कर रहा हूं, कर रही हूं उनके लिए? जितनी बातें बताई उसके अतिरिक्त और वो कौन से नुकसान है जो अति संवेदनशील होने से होते हैं, क्या कहेंगे? सभी बताएंगे। कोई भी पॉइंट? बाबा से बेमुख हो सकते हैं, क्योंकि यदि हमें किसी ने कुछ कहा तो इस ज्ञान के प्रति ही वैराग आ जाता है कि इतना ज्ञान में चलने वाले और ऐसा बोल रहे हैं। संशय भी आ सकता है, संशय आ सकता है, बेमुख हो सकते हैं, और नुकसान, और क्या नुकसान हो सकता है? इस भट्टी में सुनते सुनते साथ साथ चिंतन भी करना है, दोनों चीजें साथ साथ चालू हो, और क्या हो सकता है? सभी बताएंगे ताकि खाली लेक्चर ना रह जाए, हो जाए कुछ, उसमें लेन देन हो, ज्ञान की चर्चा हो, थोड़ा डिस्कशन हो। एक दूसरे के प्रति दुर्भाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आपसी जो संबंध है उसमें टकराव, संस्कारों में टकराव। और एक चीज जो है वो है कहीं ना कहीं इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कंपैरिजन होता है दूसरों के साथ, तुरंत कंपेयर करते। यदि किसी में कोई कला है और थोड़ा भी कोई आगे जा रहा है तो हमारे अंदर हीन भावना तुरंत आ जाती है और उससे हम निकल नहीं पाते, हीनता का भाव, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या तो कभी सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। और उस सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स को यदि किसी ने हर्ट किया तो बदला लेने के अभाव भी जागृत होता है सूक्ष्म रीति से। जिन भावों की हम चर्चा कर रहे हैं वो इतने सूक्ष्म भाव है कि मन में कहीं ना कहीं है, और जिसमें ये है शायद उसको भी पता नहीं कि ये मुझ में है, पर वो है अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं। क्योंकि सेंसिटिव व्यक्ति ने हर एक जो दर्दनाक चीज है वो समा के रखी है अपने अंदर, स्टोर्ड है, उसको खत्म नहीं किया है, उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया है। वो जैसे आई थी वो अंदर गई है और समा गई है, और उसके ऊपर चिंतन किया है, उसके ऊपर सोचा है, और बाहर से कुछ नहीं कर सकते इसलिए वो अंदर ही अंदर सप्रेस्ड हो गई है। इमोशनल सप्रेशन। तो क्या किया जाए जिससे ये जो सेंसिटिव नेचर है, ये जो फीलिंग देवी होने का स्वभाव है, यहां इससे हम मुक्त हो जाए? सबसे पहले तो कहा कि ये जो ब्रह्मा कुमारी जीवन है वो एक अग्निपथ की तरह है, अंगारे है, कांटे है, सब कुछ है यहां पर। अगर इसमें हम ऐसे ही सेंसिटिव रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा इसमें विघ्न आएंगे, समस्याएं आएंगी, परिस्थिति आएगी, और हर दिन नए विघ्न, हर दिन नई परिस्थितियां, हर दिन एक नया पेपर। ये जो ब्राह्मण परिवार है ये एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है, एक एक ब्राह्मणात्मा पेपर है। एक एक ब्राह्मणात्मा क्या है इस हॉल में? पेपर है। हमारे पेपर बाहर वालों से कम, परिवार से ज्यादा है। सात प्रकार के पेपर है। सबसे पहला पेपर ब्रह्मा कुमारी जीवन का, बहुत सारे पर पहला हम लेंगे लौकिक का पेपर। कुछ पेपर आएंगे लौकिक से, किसी की मृत्यु, किसी की बीमारी, उधर वो बीमार, इधर हम हलचल में। और इस पेपर को हर एक को पास करना है अचल अडोल रहकर। आर्थिक पेपर, आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दूसरा पेपर साथियों से पेपर, सेवा साथी है उनके द्वारा। कौन से पेपर आएंगे उनके द्वारा? उदाहरण सभी जानते हैं, जैसे कि क्या? हाँ, संस्कारों का मिलन ना होना, टक्कर होना, टकराव होना संस्कारों की, अनबन नहीं बनना, और एक दूसरे की बात को ना मानना, और कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, ईर्ष्या, उसमें सूक्ष्म ईर्ष्या का भाव। तो ये पेपर जो है वो साथियों से आएगा। कुछ पेपर जो है तीसरा नंबर, हमारे जो छोटे हैं, हमसे छोटे, कन्याएं हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उनके द्वारा पेपर। चौथा पेपर हमसे जो बड़े हैं उनके द्वारा पेपर। उन्होंने कोई बात कह दी, कही शिक्षा के रूप में, परंतु हमें वो शिक्षा नहीं लगी, हमें कुछ और लग रहा है। बड़ों के द्वारा पेपर। पांचवा स्टूडेंट्स के द्वारा पेपर। कौन से पेपर आते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा? स्टूडेंट्स के द्वारा आते हैं या नहीं आते? आते हैं। कौन से? सभी का मौन है शायद योग पट्टी में, बोलना है। स्टूडेंट्स के द्वारा कौन से पेपर आते हैं? स्टूडेंट्स की मनमानी करने लगती है, अपनी मर्जी से चलने लगते हैं, बिना पूछे कार्य करने लगते हैं, और क्या करते हैं? जैसे उनके संस्कार होते हैं वैसे दूसरों को चलाना चालू करते हैं, गुटबाजी, अपना ही ग्रुप बना लेते हैं, अपना ही सब कुछ करेंगे। और हर एक सेवा केंद्र में हमने देखा ऐसा होता है। स्टूडेंट्स के द्वारा अलग अलग प्रकार के पेपर आते हैं, और क्या पेपर आते हैं स्टूडेंट से? सभी जानते हैं। ऐसे पेपर जो हमको डिस्टर्ब करते, एक उल्टा चलता है और दूसरों को भड़काना चालू करता है, या तो उनमें पक्षपात, एक से ज्यादा प्यार करेंगे बाकियों से नहीं, एक से ही बात करेंगे बाकियों से नहीं, ये सारी समस्याएं प्रैक्टिकल समस्याएं हैं और इससे कहीं ना कहीं मन डिस्टर्ब हो जाता है और जितना अधिक सेंसिटिव व्यक्ति होगा और अधिक डिस्टर्ब होगा। तो कुछ पेपर स्टूडेंट्स के द्वारा, कुछ पेपर बाहर वालों से आते हैं। छठवां नंबर, बाहर वालों से क्या पेपर आते हैं? बाहर वाले जो ज्ञान में नहीं चलते, उनसे भी कोई पेपर है? जी हाँ, जो ज्ञान में चलते हैं उनके, जो ज्ञान में न चलने वाले रिश्तेदार है वो आके हंगामा कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं, पुलिस को लेके आएंगे, हंगामा करेंगे, मारपीट करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो एक अलग प्रकार के पेपर है। क्या आप कहां जाने लग गए? हाँ, रोक देंगे जी, अपने वश में कर लेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग प्रकार की विद्याओं का प्रयोग करते हैं, जादू टोना। हमारे पास बीच में एक बहन जी आए थे, बता रहे थे, क्लास की एक माता जी है और उन्होंने सेंटर के सामने दूसरा एक सेंटर खोल दिया है, गीता पाठशाला, और अचानक देखा कि यहां के सब वहां जाने लगे, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बाद में पता चला ये सब वो कर रहे हैं, वो भी पेपर है। शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, अलग अलग पार्टियां हैं। और सातवें नंबर का पेपर कितने हो गए? छह। एक पेपर है मधुबन से पेपर। मधुबन के कौन कौन से पेपर है? सभी पार्टियां लेकर जाती है मधुबन में, क्या होता है वहां पर? सबसे पहला पेपर एकोमोडेशन। दूसरा पेपर मधुबन के पेपरों में, कोई माता गुम हो गई तो ट्रेन में लेके जा रहे, घर वालों को बताया कि हम लेके जाएंगे, घर वाले तो बोल रहे मत लेके जाओ माता को, फिर भी हम अपनी जिम्मेवारी पर लेके जा रहे, और गए और माता जी ट्रेन में गुम, ढूंढ रहे उसको सब जगह, कहीं नहीं मिल रही है, क्या करें? मधुबन में जाने का पेपर, सामान था चोरी हो गया पेपर, और मधुबन में रहने के बाद वहां कौन से पेपर है? और वहीं बीमार हो गए। हम बीमार हो गए तो ठीक है, कोई दूसरे हम जिसको लेके आए वो बीमार हो गए तो फिर उनको सब कुछ करो, वो उनका सारी पार्टी को छोड़कर उस एक के पीछे लगो, उसके घर पे फोन करो, और थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो तो और ही ज्यादा मुश्किल है, यहां शिफ्ट करो वहां शिफ्ट करो, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारे पेपर फेस करने पड़ते। जगह ठीक नहीं मिली, एकोमोडेशन का तो कहा, एक तो जगह मिली पर दूसरा है ठीक नहीं मिली, फिर पीछे पड़ते अभी चेंज करके दो, दूसरे को अच्छी मिली हमें अच्छी नहीं मिली, बेंच हाँ सब मिले तो सबको, नहीं तो सभी टेंट में, पर वो कमरे में और हम टेंट में, कहाँ है बहन जी, ऐसा क्यों? घुमाने की माया। फिर शॉपिंग मधुबन में बहुत सारा, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया और गुम हो गया, और मधुबन से पेपर खाने का, ये एक है टोली, टोली का क्या पेपर, खाने का कोई पेपर मधुबन में? क्या कहेंगे? खाने का भी है, पेपर तो है, पर कौन सा? तो भोजन कभी कभी पसंद नहीं आता, एक तो ये, और वीआईपी पास वाला पेपर। दादियों से मिलाओ, उनको मिलाया, हमको क्यों नहीं मिलाया? हमको मिलाओ, चाहे दादी की तबीयत कैसी भी हो, हम मिलना चाहिए बस, हमको मिला दो, हम हमें मिला दो, हम किसी को बताएंगे नहीं। बताए बिना रहते भी नहीं है। नहीं, ये तो चलो इधर के अंदर के पेपर है, मधुबन से पेपर, मधुबन में पेपर और मधुबन से पेपर है एक, वो कौन से? कोई अगर कुछ कह दे तो कहता है ना कभी कभी, कोई कुछ कह दे तो तब भी दर्द होता है, तीर लगता है, 10 दिन के लिए गए और हम 20 दिन रहे और कोई कह दे कि धर्मशाला समझ के रखा है क्या, तो कौन क्या कहेगा, बता नहीं सकते। इसके लिए हम बात कर रहे हैं सेंसिटिव नेचर की, और ये तो अभी पेपर्स की चर्चा की। सबसे पहला पेपर बताया लौकिक का, दूसरा साथियों के द्वारा, तीसरा अपने से जो छोटे हैं उनके द्वारा, चौथा बड़ों के द्वारा, पांचवा स्टूडेंट्स के द्वारा, छठवां बाहर वालों के द्वारा, और सातवां मधुबन के द्वारा। सातों ही प्रकार के पेपर आएंगे, सातों में अचल रहना है, अडोल रहना है, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, प्लानिंग। हम किसी के मुंह में पट्टी नहीं लगा सकते, कौन क्या कहेगा, किस तरह व्यवहार करेगा, हर एक वैसा ही कर रहा है जैसा उसका स्वभाव है, फिर वह कितने समय से ज्ञान में है और कहां रहता है, वो सब बातें गौण हो जाती है, क्योंकि संस्कार परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है। चाहे कोई कब से भी ज्ञान में, परंतु वह संस्कार यदि उसमें है और उसने काम नहीं किया उस पर, तो वह संस्कार वैसा ही रहेगा और लंबा समय तक चलेगा। अगर किसी को दुख देने का संस्कार है, कटु वचन बोलने का संस्कार है, वो तो बोलेंगे ही, अब करना हमें क्या है, वो हमें सोचना है। तो अभी अगला प्रश्न है कि इस संवेदनशील स्वभाव से या इस संवेदनशीलता से, इस फीलिंग देवी के नेचर से कैसे मुक्त हो, क्या करें कि जिसमें एकदम अचोल, अचल, अडोल हम रहे। जीवन में यह सब कुछ होगा, ऐसा हम कहें कि यह कुछ भी, मुझे कोई कुछ भी ना कहे, ऐसा हो सकता है? मैं कुछ भी कहूं, मैं तो अच्छे से हूं, मैं श्रीमत पर चल रही हूं, पर मुझे कोई कुछ करना नहीं चाहिए, कोई ना कुछ मुझे करेक्शन दे, ना कुछ मुझे कोई कहे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करे जिससे ये जो स्वभाव है, इसकी जो तीव्रता है, थोड़ी कम हो जाए या उससे कभी मुक्त भी हो जाए पूरी रीति से, तो क्या करना चाहिए? दया भाव। हाँ, दया भाव। दया भक्ति का शब्द है, रहम थोड़ा अच्छा शब्द है, तो हमें शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है हर आत्मा के प्रति, क्योंकि एक अभी अभी अव्यक्त मुरली चली थी त्याग के ऊपर, पिछले संडे के पिछले संडे, जिसमें बाबा ने कहा था रावण के सिर बहुत सारे सिर होते हैं, क्या क्यों कैसे कब कहां एक सिर कटता है दूसरा आता है, उसमें एक बात कही थी कि जब कोई व्यक्ति कोई भी विकर्म कर रहा है ब्राह्मण आत्मा, तो ये समझो कि उस समय वो मायावी प्रभाव की शक्ति में है। उसका इससे कोई संबंध नहीं है कब से है वो, परंतु उस समय एक मायावी प्रभाव है, वो वशीभूत है उस समय, एटलीस्ट दैट टाइम। तो जैसे बहन जी ने कहा रहम भाव एक तो है, परंतु हम बात कर रहे हैं सेंसिटिव नेचर वाले व्यक्ति में रहम भाव रहता ही है, वो रहम दिल होता है। और कुछ दूसरी बातें बताओ कि जिससे ये जो बार बार दुखी होने का, उदास होने का, नाराज होने का, जो ऐसे होते हैं वो थोड़ी कभी कभी धमकी भी दे देते हैं, हम जा रहे हैं छोड़कर, ऐसा भी करते हैं, ये भी उस स्वभाव में इंक्लूडेड है। अगर ज्यादा उनको कुछ कह दिया तो बस खत्म, वो क्या कर देंगे बता नहीं सकते। तो क्या किया जाए, क्षमा कर देना उसको। और दूसरा बताओ, मुरली की पॉइंट्स बुद्धि में रखना है, मतलब ज्ञान का मनन करना है। आज सुबह भी कहा होशियार बनना है तो विचार सागर मंथन करना है। और बताओ कुछ दूसरी प्रकार की पॉइंट्स बताओ, थोड़ी पावरफुल, कार्मिक अकाउंट्स। हाँ ये एक है, कार्मिक अकाउंट्स को याद रखना है, बुद्धि में रखना है। और क्या, ट्रीटमेंट हम पूछ रहे हैं, बीमारी तो पता चल गई कि ये बीमारी है, पहले तो बीमारी का तो पता चले, हमारे अंदर बीमारी और हमको पता ही नहीं, विकारों का डायग्नोसिस, विकारों का डायग्नोसिस करते आना चाहिए। जब डायग्नोसिस होगा तो ही तो इन्वेस्टिगेशन और आगे की ट्रीटमेंट होगी। तो ये भी एक सूक्ष्म विकार ही है, छुई मुई बाबा जिसको कहते हैं, हाथ लगाओ और बस। क्या किया जाए जिससे ये स्वभाव परिवर्तन हो जाए, बाबा के साथ कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है ही। तो बाबा को दे देना, तो बाबा को दे देना जो भी बात आती है। चलो वो एक, और संवेदनशील स्वभाव से कैसे मुक्त हो, या अर्थात हम ये पूछ रहे हैं कठोर कैसे बन जाए। पहले तो पहली स्टेप ही है कि ये जो वीकनेस है इसको वीकनेस की रीति से देखना, इसका पहले डायग्नोसिस करना कि ये है। पहली तो ये बात ही व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है कि ऐसा भी कुछ है, कि ये भी कोई एक विकार है, इसकी तो कहीं चर्चा भी नहीं है इतनी, बीच में कभी तो आ जाता है मुरली में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा, पर ऐसी विस्तार से चर्चा कहीं नहीं है। और इसको तो अच्छा गुण माना जाता है एक रीति से, परंतु हम अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं इससे। तो सबसे पहली बात है डायग्नोसिस, सबसे पहली बात है आइडेंटिफाई करना कि ये यहां है, ये मेरा स्वभाव है और इस स्वभाव की वजह से मैं बार बार दुखी हो रहा हूं, हो रही हूं। एक दूसरा, बाबा ने एक मुरली में कहा है कि इस ड्रामा, ये जो झाड़ है इसके आसपास के जो पत्ते हैं उनके स्वभाव और संस्कार को समझो। हमारे आसपास जो आत्माएं हैं हमें उन्हें जानना है, उनका स्वभाव क्या है, उनका संस्कार क्या है। जब उन आसपास की आत्माओं को हम जानेंगे तो फिर उनसे संबंध संपर्क में आना थोड़ा सरल हो जाएगा। हमें उनका स्वभाव पता है, ये ऐसा है। जैसे किसी का स्वभाव ही कटु बोलने का, जैसे कोई एक व्यक्ति है ऑफिस में अपने ड्यूटी पर रोज टाइम से आता है, बराबर एक दिन थोड़ा सा 15 मिनट लेट हो गया तो तुरंत किसी ने उसको कह दिया ये तो हमेशा ही लेट आता है। किसी ने क्या कह दिया, ये तो हमेशा ही लेट आता है। यदि आपको कोई ऐसा कह दे तो कैसा लगेगा? अति संवेदनशील व्यक्तित्व अर्थात इसको इतना गहराई से पकड़ लेगा, इतना दुखी हो जाएगा और इसी के विषय में सोचते रहेगा। हमारी ओपीडी में बीच में एक कुमार आए थे मधुबन से, सेवाधारी, इतना दुखी था। मैंने बोला क्या हुआ? उसने कहा कि आम मिल रहे थे तो अनाउंसमेंट हुआ था जो मधुबन निवासी है उनके लिए आम मिल रहे, तो मैं जाके कहा तो मुझे कहा कि नहीं आप बाद में आना। तो ये इतनी सी बात और वो इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया। अभी इस बात को किस तरह लिया जाए? जब मधुबन निवासियों को आम मिल रहे तो मधुबन निवासी लेंगे, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम लेना। हर दिन किसी ना किसी को तो मिल ही रहे, इसमें दुखी होने की क्या बात है? परंतु स्वभाव ऐसा है कि दुख को पकड़ता है व्यक्ति, जैसे इंतजार में है कब दुख आएगा, कब दुख आएगा, कब दुख आएगा। सुख आ रहे जा रहे, देख रहे सुखों को, लोग स्तुति कर रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं, एक ने की, दूसरे ने महिमा की, तीसरे ने महिमा की, दसवां एक आया उसने कुछ ग्लानी कर दी, उसने थोड़ा दुख दिया कि एकदम झपट लिया और उस दुख को पकड़ लिया और अंदर समा लिया और उसको अंदर रखकर उसके ऊपर चिंतन करके फिर उसका वर्णन करके लंबा समय तक उसको खींचना, ये मनोविज्ञान कहता है मनुष्य का स्वभाव है। अर्जित करता है दुख को, सुख को, सुख तो स्वभाव है, आनंद तो स्वभाव है, दुखों को अर्जित करता है, बहुत कष्ट सहन करता है कमाने के लिए, पकड़ पकड़ के लाता है, मिलते नहीं है फिर भी ढूंढता है और लाता है, ये स्वभाव है। 10 लोगों ने महिमा की उसका कुछ नहीं, एक ने कुछ कह दिया पकड़ लिया, ये स्वभाव। तो पहला कहा डायग्नोसिस और दूसरा कहा आसपास के जो पत्ते हैं झाड़ के, आसपास की जो आत्माएं हैं, साथ रहने वाली ऊपर नीचे सारी आत्माएं, उनके क्या करो, स्वभाव को समझो। हो सकता है उनका स्वभाव ही वैसा है और पर अंदर से वो बहुत अच्छी है आत्मा, परंतु बोल ही ऐसे है, अब क्या किया जा सकता है? 2 ऑप्शन है, या तो हम दुखी हो जाएं उसने जो बोला वो सुनकर, या तो फिर अप्रभावित रहे, हमारे ऊपर है, या तो उसको इस रीति से देखे कि इस आत्मा के द्वारा बाबा कुछ कह रहा है और ये इससे मुझे सीखना है। ये तो उससे भी आगे की दृष्टि है। एक तो होता है हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये असत्य है, ये झूठ है जो ये कही बात है। अगर किसी ने आरोप ही लगा दिया तुम ऐसे हो या तुमने ये किया, जब हमने किया ही नहीं है तो दुख है, परंतु उसके बाद भी यदि ये हो रहा है कुछ तो राज होगा। लंदन में एक सन्यासी था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया एक मर्डर केस में, 22 साल की सजा दे दी गई। 18 साल जब पूरे हुए तो जिसने खून किया था वो सामने आया कि उसने कहा मैंने खून किया है, मैं हूं अपराधी, तो कोर्ट ने सन्यासी को छोड़ दिया। सन्यासी कहता है मेरी अच्छी तपस्या हो रही है, इधर ही रहने दो। और रही मर्डर की बात, मैंने अपने जीवन में मक्खी भी नहीं मारी है, तो मर्डर की तो बात ही बहुत दूर। परंतु उसके बाद भी ये मेरे साथ हुआ, अर्थात ये मेरे ही किसी जन्म का फल था, अर्थात मेरे ही किसी और जन्म का ये पाप था। इस जन्म में तो मुझे पता है मैंने कोई किया ही नहीं पाप, परंतु फिर भी तो हो रहा है, जरूर कुछ तो होगा पिछले जन्म का। हमने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं भारत भर से जो हॉस्पिटल में आते, कुछ कुछ ब्रह्मा कुमारिया 20 साल की उम्र, ऐसी बीमारी है कि जिसमें कभी नहीं ठीक हो सकती, रेयर बीमारियां, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें धीरे धीरे अभी दीवार को पकड़ पकड़ के चलते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा चलना बंद हो जाएगा कुछ सालों में, ऐसी बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, ऐसी ऐसी बहुत न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, कमजोरी हाथों में यंग एज में। अब उन्होंने क्या किसको दुख दिया या पाप किया, पहले ठीक थे, ऐसा भी नहीं कि बचपन से, 10-12 साल तक ठीक थे, 12 साल के बाद बीमारी चालू हुई और अभी इनक्यूरेबल। यदि हमने कुछ भी नहीं किया और उसके बाद भी जीवन में कुछ हो रहा है, अर्थात ये किसी ने कहा ना कार्मिक अकाउंट है। तीन प्रकार की यात्रा है, एक तो है जीवन की यात्रा जन्म से मृत्यु तक, दूसरी यात्रा है ब्राह्मण जन्म की यात्रा, ब्राह्मण जब से बने और अंत तक, तीसरी और एक यात्रा है वो है हिसाब किताब की यात्रा, किसी एक आत्मा के साथ। उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर है तो उसका एंड पॉइंट भी है। अब ये हिसाब किताब तो है, क्या करें, कोई भाई है कोई बहन है दिन रात हमें परेशान करते हैं, क्या करें, हमने कुछ किया ही नहीं है परंतु फिर भी हो रहा है, अब क्या किया जाए। ये जो हिसाब किताब है इसे चुकतु तो करना है, परंतु नया हिसाब नहीं बनाना है उसमें, जो बॉन्डेजेस है वो ठीक है, नए क्रिएट नहीं करना है। और एक बात, ये जो जर्नी है इस यात्रा को कैसे सुखद बनाए इसके ऊपर चिंतन करना है। हिसाब किताब तो चलेगा, जब तक चलना है तब तक चलेगा, जिसको जो हमारे साथ करना है वो करेगा, वो होगा, परंतु अब इस यात्रा को हमें सुखद बनाना है, तो यह हिसाब किताब की यात्रा है, इस यात्रा को भी याद रखना है। तो हम बात कर रहे थे डायग्नोसिस करना, आसपास के पत्तों को जानना, झाड़ के जो पत्ते, आसपास रहने वाली आत्माओं के स्वभाव संस्कारों को समझना, रहम भाव रखना, और एक चीज, ड्रामा के ज्ञान को पक्का करना। ड्रामा के ज्ञान की कुछ पॉइंट्स है 15-20, 24 घंटे में एक बार ये सारी पॉइंट्स बुद्धि में घुमाना है, 24 घंटे में एक बार, और सबसे बेस्ट टाइम है शाम का। सुबह सुबह तो योग होता है, शाम का समय या रात को सोते समय ड्रामा की सारी पॉइंट्स अपनी एक डायरी में लिख के रखो, याद कर लो, और फिर एक बार बाबा के सामने जब बैठते हैं सारी की सारी पॉइंट्स याद करो। जैसे कि अभी हम रिवाइज कर लेंगे एक बार, ड्रामा की कौन कौन सी पॉइंट है सभी जानते हैं, हम तो आप तो सबको सिखाने वाली है, कौन सी पॉइंट्स है। पहला ड्रामा, ड्रामा कल्याणकारी है, इतना कहने से नहीं होगा, उसके साथ कुछ जोड़ना पड़ेगा। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है, पहली पॉइंट। दूसरा, 15 पॉइंट बतानी है, 15 या 20, अभी एक ही हुई है और सब जानते हैं, जो हो रहा है वो कल्प पहले भी हुआ था, तो नथिंग न्यू, जो भी ये हुआ है इसमें नया कुछ नहीं है, ऐसा ही हुआ था, तो नथिंग न्यू। तीसरा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है उससे अच्छा, और जो होगा वो उससे भी अच्छा, बहुत अच्छा। चौथा, हर आत्मा, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसमें दो तीन चीजें और जोड़ सकते हैं, हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है, हर आत्मा की अपनी अपनी बीमारी है, हर आत्मा की अपनी अपनी प्रारब्ध है, हर आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है, हर आत्मा का अपना अपना स्वभाव है, हर आत्मा की अपनी अपनी बुद्धि है। ऐसा नहीं कि कोई कुमारी आ जाए और हम सोचे इसको सब कुछ आ जाए, जैसे हम सीखे सब सब फटाफट ये भी सीख ले। हो सकता है वो 4 साल लगा दे जो हमने 1 साल में सीखा, पर हम चाहते हैं कि ये फटाफट सब सीखे। सूरज भाई ने भाई जी ने एक बार अनुभव सुनाया था, जब वो नए थे मधुबन में थे बहुत पहले, तो एक नया सेवाधारी आया। अभी उसकी बुद्धि थोड़ी कम थी, जो भी काम उसको बताया जाता था, उसको एक बार काम दिया गया खिचड़ी बनाने का, तब तो उसने सब गड़बड़ कर दिया। चावल इतना सा लिया, दाल बहुत सारी ले ली और वो कुछ के कुछ बन गया। अब 2 मार्ग है, या तो उसको बहुत डांटो कि ये तुमने क्या कर दिया, इतना बार समझाने के बाद भी तुमने ऐसा कर दिया, या तो सोचो इसकी बुद्धि इतनी है, जिसकी उतनी जितनी बुद्धि है उसी अनुसार उसे सेवा देनी है। हम अपनी हमने जो कुछ किया और फटाफट सब सीख लिया था, हमको किसी ने सिखाया नहीं था, और इसको हम इतना सिखा रहे फिर भी नहीं सीखता, और उस पर गुस्सा करना, उसको रोज चिल्लाना, उसको सिखाना, उसको ब्रह्मा कुमारी हम बना के ही रहेंगे। जबकि उसकी बुद्धि कम है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है संसार में है। ऐसा है ना? तो ड्रामा में हर एक्टर अलग अलग है, ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट फिक्स्ड है। ड्रामा में सबसे महत्वपूर्ण बात, हर एक्टर कैसा है इस ड्रामा का, कैसा है, कैसा है, विशेष है, यूनिक है, और कैसा है इस ड्रामा का हर एक्टर, फिक्स्ड है, उसका पार्ट फिक्स है, पर हर एक्टर कैसा है, बहुत अच्छा, और परफेक्ट है, और एक बात है, एक्यूरेट है, और हीरो एक्टर है। इस ड्रामा का हर एक्टर और एक बात है, वो अगर हो जाए तो सारे झगड़े खत्म। इस ड्रामा का हर एक्टर बाबा को प्यारा है, वैल्यूएबल है। इस ड्रामा का हर एक्टर एक्यूरेट है, परफेक्ट है, यूनिक है, न्यारा है, विशेष है। इस ड्रामा का हर एक्टर मेरा भाई है। इस ड्रामा का हर एक्टर होवनार देवता है। इस ड्रामा का हर एक्टर बाग भगवान का चुना हुआ रतन है। इस ड्रामा का हर एक्टर ड्रामा में फिक्स है, वो तो है, और इस ड्रामा का हर एक्टर संपूर्ण निर्दोष है, सारे झगड़े समाप्त। निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। और ड्रामा की पॉइंट्स, ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा फिक्स, ड्रामा के एक्टर्स की बात हो गई, और ड्रामा के बारे में फिर से आ जाओ ड्रामा पर। ड्रामा कैसा है? ड्रामा कल्याणकारी हो गया, ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, हर एक के साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। यह ड्रामा सत्य है, यह ड्रामा विविधतापूर्ण है, वैरायटी है इस ड्रामा में। यह ड्रामा कैसा है? सत्य है। निर्वैर भाई साहब ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी, बाबा के साथ, बाबा के सामने बहुत सारे ड्रामा है, तो बाबा ने देखा इस ड्रामा को चुना क्योंकि यह सबसे अच्छा था, बाकी ड्रामा को छोड़ दिया। ऐसे 5000 साल के अलग अलग सेट आए थे तो इसको चुना गया क्योंकि ये जो ड्रामा था बहुत अच्छा है, बाकी इतने अच्छे नहीं थे, तो ये जो ड्रामा है वो ड्रामा बाप को पसंद है, साकार महावाक्य। तो आगे की लाइन आप बताएंगे। ड्रामा बाप को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। बाप को ड्रामा के हर एक्टर पसंद है तो तुम्हें भी इस ड्रामा का हर एक्टर पसंद आना चाहिए। ड्रामा में ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, ड्रामा में नथिंग न्यू, ड्रामा में वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, और ड्रामा में जो हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। ड्रामा टिक 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 जो हो रही है ड्रामा की, ड्रामा में अदली बदली नहीं हो सकती है, ड्रामा चेंज नहीं हो सकता है, ड्रामा अपरिवर्तनशील है। ये ड्रामा की क्वालिटीज है सारी। और इस ड्रामा का नाम क्या है? जैसे कोई मूवी है और जिसका नाम है मर्डर, ठीक है, और उसमें हम गए और सब प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे हैं लास्ट तक, तो कहेंगे नाम ही गलत दिया हुआ है। इस ड्रामा का नाम है खूने नाहक खेल, तो इसमें क्या होगा? लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ तो होगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ भी ना हो? ड्रामा का नाम जैसा है। और एक बात, ड्रामा की शूटिंग अब चल रही है, मूवी रिलीज होगी सतयुग से, अभी शूटिंग चालू है। ड्रामा की सारी पॉइंट्स एक बार क्या करना है, चक्कर चलाना है इसका अंदर ही अंदर, तो देखेंगे कि शांत हो गए हम, स्थिर हो गए। तो ड्रामा, और लास्ट पॉइंट संवेदनशीलता से मुक्त होने की, ज्ञान को, ज्ञान की हमारी जो पकड़ है, ज्ञान की जो गहराई है, ऊपर ऊपर से है शायद, ज्ञान की जो पकड़ है उसको मजबूत करना है। क्योंकि जितना हमारे पास ज्ञान अधिक होगा, उतना हम परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली होकर लड़ सकेंगे। अभी परिस्थिति आती है और हम हिल जाते, शायद ज्ञान की कमी है। सुबह हम बात कर रहे थे, एक होती है सूचना, एक होता है ज्ञान, तीसरा होता है विवेक। सूचना अर्थात मैं आत्मा हूं, परमात्मा परम धाम में है, तीन लोक, 5000 साल का चक्र, बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी। परंतु ज्ञान ऊंचा है थोड़ा, जो वो ज्ञान दे रहा है उसकी गहराई, एक एक वाक्य में क्या अर्थ है, शब्द क्या है, शब्दार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, चार चीजें हैं। एक होता है शब्दार्थ, शब्द का अर्थ क्या है, मुरली में जो जो शब्द आ रहे हैं उन एक एक शब्द का अर्थ क्या है वो हमें पता चाहिए। दूसरा है वाक्यार्थ, कंप्लीट वाक्य का अर्थ क्या है। तीसरा है गुणार्थ, गूढ़ अर्थ, डीप मीनिंग क्या है उस वाक्य का, साधारण से दिखने वाले वो वाक्य कुछ और ही उसका अर्थ है। और चौथा है भावार्थ, भाव क्या है, बाबा किस भाव से ये कह रहा है सारा। हमेशा हम कहते हैं स्पीकर इधर बैठा है, ऑडियंस इधर है, अंतर है, उसकी स्थिति यहां है, हम यहां है। जब तक हमारी स्थिति यहां ना हो जाए तब तक उसने जो कुछ कहा है उसको समझा नहीं जा सकता है। इसलिए भावना की ये जो उड़ान है इसको थोड़ा कम करना है, नहीं तो इसमें पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति रो रहा है, जो व्यक्ति दुखी है, जो व्यक्ति बात बात पर नाराज होता है, रूठता है, रूठता है, फिर बात नहीं करता, संशय बुद्धि हो जाता है, अनुमान लगाने लगता है कि ये हमारे बारे में बात कर रहे, ये मेरे बारे में कुछ कह रहे, सोच रहे, कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, सब शत्रु मालूम पड़ते हैं। दो लोग बात कर रहे, हम गए और एकदम चुप हो गए वो दोनों, मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे, जरूर मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, हर चीज में अनुमान। तो ये जो स्वभाव है इससे मुक्त होना है। तो इस क्लास को यहीं पूरा करते हैं, अगला क्लास 5 मिनट के बाद, तब तक ब्रेक लेंगे। ओम शांति।